नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बम्बई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंदा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।